रहेगी संभ्रमित, हाथ जोड़ना इत्यादि, लालक में हाथ जोड़ना नहीं रहेगा, उसमें गौरव रहेगी, हमारे ये लालक पालक हैं, ये बुद्धि रहेगी। किंतु झट उनकी कंधे पर बैठ जाएंगे, गोदी में बैठ जाएंगे, उनकी थोड़ी पकड़ लेंगे और उनसे जिद करेंगे कि हमको ये चाहिए, और ये लोग वर इत्यादि की प्रार्थना दास के यहीं पर कर सकते। अधिक से अधिक कुछ और भी बतलाया, ये लोग हैं अधिकृत दास। अब इसको और बतलाया, ब्रह्मा इत्यादि अधिकृत दास, उनको अधिकार दिया। अधिकृत माने ब्रह्मा, शंकर जी और इंद्र, इंद्र के ऊपर में क्या भार दिया, ये जगत का स्थूल रूप में जगत का लालन पालन किया, वर्षा और सब जो चीजें हैं ये इंद्र के ऊपर भार दिया, इसलिए अधिकृत दास। और शंकर जी क्या करते हैं, जगत का शिक्षा दिया, और ब्रह्मा इत्यादि ये लालन पाल विश्व का सृष्टि किया जाता है, इस तरह से ये अधिकृत दास करें हैं। कभी द्वारका में कालिंदी जी और भालू की लड़की जम्बुवन बैठी थी, राज्यसभा में कृष्ण बैठे हैं और कालिंदी जी जंगले से झांकती हुई कृष्ण को देख रहे हैं, यमती जी क्या कर रहे हैं, कौन कौन वहां पर बैठे हैं, क्या हो रहा है, तो बतला रहे, अरे देखो ना एक साष्टांग प्रणाम कर रहा है, ये साष्टांग प्रणाम कौन कर रहा है, इंद्र, जिसको देख करके सब हंस रहे हैं वहां के, वो जदवंशी जो ये है ना सांबा और ये सब जितने लड़के हैं सब देख करके, और जो परिक्रमा कर रहे हैं ये अंबिका जी दुर्गा जी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, ब्रह्मा क्या कर रहे हैं स्तव कर रहे हैं जैसे भारत में स्तव है, और शंकर जी क्या कर रहे हैं ध्यानस्थ है, उनको सबको दिखलाया कि ये सब अधिकृत दास है, अधिकृत दास में संभ्रम भाव अधिक रहेगा, संभ्रम भाव से स्तव स्तुति दंडोत प्रणाम इत्यादि सब ये अधिकृत दास है। किंतु अभी सिद्ध नहीं है, अभी आगे आगे बढ़ रहे हैं ना? दूसरे होते हैं आश्रित दास, आश्रित दास मैंने कृष्ण के आश्रित हैं दास, उसमें शरण्य ज्ञानिष्ठ और सेवानिष्ठ और परिषद चार प्रकार के होते हैं, शरण्य ज्ञानिष्ठ सेवानिष्ठ और परिषद। शरण्य कौन है, जो भगवान के शरणागत हो गए हैं, जैसे कृष्णचंद्र जी मथुरा में जब पधारे तो सुदामा माली के यहां गए, तो उसने क्या किया, जट माला गुत करके हार गजरे का और कृष्ण को गले में अर्पित किया, उनका शरणागत कृष्ण ने उसको प्रेमा भक्ति की,
ये अनुग्रज दास है,
ये हुआ शरण्य, शरण्य है
ये
उसके अधीन है, आश्रित के अधीन, कृष्ण के जो आश्रित हैं उसके अधीन है शरण्य। और शौनक आदि ऋषि जो हैं ये ज्ञानी चर हुए, और बहुलाश्व चंद्रध्वज राजा वो जनकपुरी के बोल जो थे बहुलाश्व बहुलाश्व ने ये सब राजा जो हैं ये सेवानिष्ठ, कैसे सेवा किया कृष्ण की बलदेव जी की, ये सेवानिष्ठ। और परिषद में वहां के नंद उपनंद जो जदुकुल वाले थे, यहां यहां वृंदावन वाले नहीं, ये सब हैं,
ये नंदगढ़ में कौन है तो?
वो वहां के जदुकुल के जन्म ले, उनका भी वहां पर नंद और उपनंद और सब कुछ। अब यहां बैकुंठ में, बैकुंठ मथुरा द्वारका और ब्रज ये तीन को लिया, बैकुंठ में कौन है जय विजय इत्यादि, ये क्या करते हैं, इनकी सब प्रकार से सेवा करते हैं, किंतु सब समय सब भ्रम भाव उनके अंदर में रहता है, गौरव नहीं, गौरव होगा लाल लेने, सब भ्रम भाव। यहां पर मथुरा और द्वारका में उद्धव प्रभृति, उद्धव सबसे श्रेष्ठ दासों में, और इनके अंतरंग सेवक हैं, दास हैं। इनमें कुछ दास भी भाव भी थोड़ा सा है। इनका कार्य क्या है, ये लोग क्या करते हैं, कृष्ण को सब प्रकार से परामर्श देते हैं, इनके संग में रहेंगे, इनके इच्छासार में काम करते हैं, और कृष्ण कभी इच्छा हुई तो जो सबसे शुद्ध है इनको ब्रज में भेजा, वो भी इनके दास। और ब्रज के जो सेवक है ना, वो और भी बहुत उन्नत हैं, और उन सब में रक्तक पत्रक और दूसरे हैं, रक्तक सबसे प्रधान है। रक्तक में भी अब चले, पहले से अब चले, जय विजय हुआ, वो भगवान की सेवा करने के लिए भले ही असुरत जन्म ग्रहण किया अपने एक अंश से, किंतु भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए असुर जन्म भी ग्रहण करके चित कौन वृत्ताशु के रूप में भगवान की सेवा, ऐसे यह सबसे अपना कुछ भी विचार नहीं करते, बस प्रभु की सेवा और प्रीति ही उनको उद्देश्य है। ये वैकुंठ की सेवा, ये सेवा सुख उत्तरा वाले
प्रेम से उत्तर,
प्रेम से वह उत्तर, इन लोगों की एक विशेषता है। जैसे भी वो प्रभु की सेवा करें, इनसे बढ़कर के अयोध्या में हनुमान जी का दासत्व तो पूर्ण है। इनका दासत्व कैसा है,
प्रेमी भक्त हनुमान दास,
इनसे भी बढ़कर के वैकुंठ जय विजय से भी बढ़कर के कैसा, इतनी सेवा के प्रति उनकी निष्ठा है, सेवा वासना है, और सुख भी अपने लिए नहीं प्रभु के लिए सुख, ये दोनों चीज। हनुमान जी को एक समय जब रामचंद्र जी राम को विजय प्राप्त करके लंका विजय के पास बाद में अयोध्या में पधारे, राज्याभिषेक हो गया, सेवा सब चलने लगे, उस समय में सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, ये सब मिलकर के विचार किया, ये हनुमान हम लोगों की सेवा में बाधक है, सब सेवा यही हनुमान करता है, कोई सेवा नहीं करने देता। अभी हम लोगों को मैं देखो, यदि कोई एक व्यक्ति सेवा करने लगा तो बाकी चादर तान करके सुबह मरे बच, जितना बच करके रहा जाए सेवा से उतना ही अच्छा है, जितना बच लिया जाए छल से, बल से, कल से, चतुराई से, क्रोध दे करके भी, कभी कभी क्रोध भी कर देते हैं कि हमको कोई सेवा के लिए न
पाए,
और किसी का है सब सेवा हम, यह सेवा कौन करेगा जिसको वह प्रेम लाभ करने के लिए हृदय में
ममत्व
भाव का जगा हुआ है, वो सबको छोड़कर के मैं ये सब करूंगा, गुरु जी को, वैष्णवों को, भगवान को प्रसन्न करूंगा, ये अब हनुमान जी को विचार करो इसी पर, ये अंतिम सीमा तक ये भावना, अपने सुख की भावना नहीं, सब समय प्रभु के प्रति की भावना, अपने तनिक भी सुख का लेने, अब वो चारों ने देखा कि ये हनुमान ही पंखा डुलाता, हनुमान ही पानी, हनुमान ही पैर दबाता, कोई सेवा की जरूरत, प्रभु ने कहा हनुमान धारा जाए प्रसन्न, बिना हनुमान जी के उनका कोई काम नहीं चलता, और हनुमान 2400 घंटा उनकी सेवा में, उन्होंने कहा कि एक बात किया है, उनकी तो कोई सेवा मिलेगी नहीं, पता फिर क्या होगा रह कर, इसलिए आज से हम लोग चारों आदमी उसकी समस्त सेवाओं को बांट लें, दिन रात मिलाकर के 24 घंटे में हम लोग चार आदमी 6-6 घंटा बांट लें, और हनुमान को कोई भी सेवा करने नहीं दें, नहीं तो वो सब करने लगे, इसलिए सब लोगों ने मिलकर के चारों ने उनकी समस्त सेवा को दे दिया और करने लगे। हनुमान को कह दिया कि तू बाहर जाकर, बस हनुमान जी तो बहुत दुखी हुए, तो मैं सेवा कुछ को मिली नहीं, वो बड़े दुखी हो गए। उन रामचंद्र जी से कहा प्रभु, इन लोगों से कहा, अच्छा एक बात, जो आप लोगों को कोई सेवा पसंद नहीं है, अंततः तो कोई एक सेवा हमको दे दो, पाचे तुम मानो तो क्या चाहते, किंतु हम अपनी सेवा में से कोई सेवा नहीं देंगे। उन्होंने कहा अच्छा आप लोगों की सेवाओं से बाहर मैं बाहर में बैठूंगा, कोई सेवा में नहीं, किंतु जब उनको जम्हाई आ जाए तो हमको चुटकी बजाने का ये सेवा दी। जब जम्हाई आती है तो राम राम कहो और नहीं तो चुटकी बजा दो अपने आप। धर्म है ऐसी कोई प्रथा हमने देखा है,
बहुत जगह ऐसे चुटकी बजाते हैं।
अब चौबीस जी लोग बहुत लोगों को ऐसा
मुंबई में देखा भागवत
राम राम, अच्छा जम्हाई आई ऐसा कर तो ये चुटकी बजाने का काम हमको दे दिया जाए, मैं ये तो नहीं तो ठीक है। राम को कभी आज तक जीवन में कोई जम्हाई नहीं आई, तो ऐसा ही काम दे दो, जब न जम्हाई आएगी न बजाएगा, वो
न बजेगा रहेगा बस।
फिर हनुमान जी बाहर गए और देखा जी प्रभु को ना कहे, अब मैं तो गुरु देख नहीं रहा, कब जल्दी जम्हाई आएगी, इसलिए सब समय बजाएंगे। और घर राम को जब ही चिट्ठी बजाई तो उनको जम्हाई आने लग गई। अब सब समय चौबीसों घंटा उनको जम्हाई, इन लोगों को कोई न पानी पी रहे हैं, न पैर दबाने का काम है, न कोई काम ही नहीं, सब जम्हाई आ रही है, हाई टूटते हैं और ये चिट्ठी बजा रहे हैं,
बंद नहीं।
ये क्या कर दिया ये, इनको सब समय जम्हाई आ रही है, कोई सवाई नहीं हम लोग कर पा रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने विचार किया, जैसे ये सब हनुमान के लिए कर रहा है, इसे जब सब समय चुटकी भाई भाई सब समय चुटकी मत बजाए करो, जबकि उनको जम्हाई आए तब चुटकी बजाने। कहते हमको कैसे मालूम होगा जी, हमको तो यहाँ पर घर से बाहर कर दिया है, हमको पता नहीं है, इसलिए मैं कब आ जाए उनको जम्हाई कोई पता नहीं, इसलिए मैं सब समय बजा रहा। अंत में देखा जैसे भाई कोई सेवा इसको देनी चाहिए, नहीं तो सब से सब लोगों ने बुलाया, बुला करके उनको सेवा में लगाया। ऐसे हनुमान जी बिना सेवा के रह नहीं सकते, और हम सोचते हैं भगवान ने नर्तन दिया, सेवा में इसको बेकार क्यों नष्ट करें, जितना आराम कर लो इस जगत में हुआ था, अरे एक दिन सड़गल करके ये खत्म हो जाएगा, ये थाती मिली है भगवान को सेवा करने के लिए, तुम सेवा नहीं करेगा जल्दी ऑटोमेटिक ये घड़ी है, नहीं करेगा मरेगा, और जब सेवा करेगा तंदुरुस्त रहेगा सुखी रहेगा, जो सेवा करेगा ना वो सब मुख प्रसन्न रहता है, जो सेवा नहीं करेगा दूसरों से लज्जा करेगा और मन सब समय, इसलिए खुद सेवा करो, शुभ हरि कथा सुनो। और इसको एक एक जितने पूजे सबको भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में, गुरु सेवा में इसको लगाओ, देखो जो अभी से प्रसन्नता होने लगी और भक्ति, ये है हनुमान जी। अब इससे अब द्वारका वालों का बतलाऊंगा
कल साढ़े सात बजे
प्रतिकाश के वक्त के संबंध में बतला करके, और फिर आगे कहो
राधा कांचन गौरंगीरा देवी राधा मंत्री कृष्ण
सख्य तक नहीं, दास तक हम लोग पहुंचे थे। दास में हमने अब तक जो उदाहरण दिया गया था यो है तक, उसके उदाहरण साधक भक्तों का दिया गया, और जहां चले गए दास में वहां से सब आने लगा नित्य सिद्ध परिकर नानोपचार कृत पूजनम आर्त बंधो। इसने आर्तता का और प्रेम के सहित भगवान को वस्तु में निवेदन की जाए, उपचार से उनकी पूजा की जाए प्रेम के साथ, इसके लिए उदाहरण हुआ अम्बरीश महाराज इत्यादि का। अम्बरीश महाराज ये कैसे थे साधक, यहां पर हमने कृष्ण भक्ति रस भाविता इत्यादि का हम लोगों ने विचार किया, वहां पर राय रामानंद जी के द्वारा रचित ये श्लोक दिया गया। इसमें भी साधक ही हैं, इसमें अधिक से अधिक दे सकते हैं बिल्लो मंगल जी का उदाहरण। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति उनको कहां से मिली, बिल्लो मंगल जी को चिंतामणि, और उसकी पुष्टि कौन की, उनके गुरु
सोमगिरी
ने किया उसकी पुष्टि की, और फिर उसकी पुष्टि और अधिक की उनके जो गुरु हैं शिक्षा गुरु चैत्य गुरु सिखी पुच्छ मौत स्वयं कृष्ण ही, इस तरह से वो आ गया। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति का उदाहरण भी साधक भक्त। अब हम चलते हैं उसे ऊपर, शांतरती का दिया, वहां पर भी सिद्ध दिया कौन, सनक सनंदन सनत कुमार और सुखदेव गोस्वामी। उससे चले हम लोग और ऊपर, तब आया दास्य। दास्य में हमने पहला दिया ब्रह्मा इत्यादि, अधिकृत दास, आश्रित दास, परिषद दास और अनुगदास,
स्वर्ण ज्ञानिचर सेवानिष्ठ,
वो सब वो आश्रित के अंदर, वो अलग नहीं है। ये सब का उदाहरण हम अब क्या देंगे, वो सिद्ध परिकरों में से देना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बैकुंठ राज्य में उपस्थित हो गया, वहां पर साधक लोग नहीं है, वहां पर सिद्ध लोग हैं। इसलिए यहाँ पर जितने भी उदाहरण अब आगे चलेंगे, अब ये साधक नहीं रहे एकदम सिद्ध से, इसलिए वहां पर उदाहरण किसका दिया, जय विजय का दिया, वो परिकर। इसके बाद में हनुमान जी का दिया, ये भी दास। इसके बाद दिया द्वारका में उनके बहुत प्रकार के दास हैं, एक तो है लाल्य है, एक परिषद है, लाल्य में प्रद्युम्न अनिरुद्ध इनमें, और दूसरे लोगों में कुछ अंतर है, हनुमान से भी इनका अंतर है, हनुमान तक में भी और जय विजय में कुछ भगवान के प्रति कृष्ण के प्रति या राम के प्रति ऐश्वर्य युक्त बुद्धि होकर के उसमें दास्य आएगा। और द्वारका वालों में जैसे हैं सांब हैं, प्रद्युम्न हैं, अनुरुद्ध जी हैं, इनमें गौरव भाव रहेगा, गौरव और ऐश्वर्य भाव ज्ञान ये थोड़ा सा पृथक है, एक नहीं है। अर्थात हनुमान जी का
और दूसरे लोगों का, वैकुंठ में जय विजय का, अपने उपास्य के प्रति ये भगवान है ये भी भाव रहेगा। और गौरव वाले में जो लाल्य हैं उनमें यही भाव अधिक से अधिक रह सकता है कि कृष्ण जो हैं या रामचंद्र कृष्ण हैं ये मेरे पिता हैं, हमारे पूज्य हैं, इसलिए गुरु जी में गुरुजनों में जो पूज्यत्व बुद्धि होती है इसको कहते हैं गौरव। नरवत है, ऐश्वर्यवत, उसमें भगवान की बुद्धि सांब को, प्रद्युम्न को, अनिरुद्ध को नहीं है, उनमें क्या भाव है, उसमें गौरव है। गौरव कहते हैं पूज्य बुद्धि जहां पर होती है उसमें गौरव भाव, जैसे हमारे प्रति यहाँ के बच्चों का ऐश्वर्य बुद्धि, ये भगवान है ऐसा नहीं, हमारे जैसे हैं, थोड़ा सा ज्ञानी हमसे हैं, थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं, कुछ ये सब शास्त्रों की बातें जानते हैं, इसलिए हमारे ही जैसे हैं, किंतु हमसे पूज्य। ऐसे ही वहाँ नर्वत लीलाक में पूज्यत्व भाव में गौरव करते हैं। और तीसरे होते हैं वृंदावन के सखा, वृंदावन के दास, वृंदावन के दास वो कैसे होते हैं, इनमें ऐश्वर्य तो एकदम रहता नहीं, द्वारका वाले में कुछ कुछ रह भी सकता है, किंतु ब्रज के दास में केवल गौरव भाव रहता है। क्या गौरव, कृष्ण राजकुमार हैं, कृष्ण राजा नंद बाबा के लड़के हैं, ऐसी बुद्धि रहती है। यहाँ के दासियों में कुछ सख्य भाव मिश्रित रहता है, हनुमान जी का दास्य उसमें ऐश्वर्य और गौरव दोनों रहता है, उद्धव के दास्य में गौरव और ये दोनों चीजें हैं, उनमें सख्य तो है किंतु सब समय ऐश्वर्य ज्ञान युक्त और गौरव युक्त है। और वहां के दासों में ही गौरव भी, गौरव तो है ऐश्वर्य ज्ञान नहीं, वो कृष्ण को गोदी में ले लेंगे, कौन, ब्रज वाले, और ले करके उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, और यहां तक कि कृष्ण के पलंग पर कृष्ण के साथ में लेकर के सो भी जाएंगे। इनमें ये जो दास हुए उसमें से जो द्वारका और ब्रज के दास हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, धूर्य, धीर और वीर, तीन प्रकार के होते हैं, धूर्य, धीर और ये क्रमशः पहला वाला श्रेष्ठ, उससे से कम दूसरा, और उससे भी कम तीसरा भी, जिसमें धूर्य जो दास होते हैं उनमें सख्य भाव अधिक होता है, दास भाव कम होता है। जैसे धूर्य में होता है कृष्ण के प्रति और कृष्ण के प्रेयसी के प्रति और कृष्ण के भक्तों के प्रति प्रीति रहती है, तीनों के प्रति, तब होते हैं धूर्य होते हैं, ये बड़े श्रेष्ठ होते हैं, कृष्ण के प्रति भी रहेगी, उनकी प्रेयसी सत्यभामा के प्रति भी रहेगी और दूसरों भक्तों के प्रति भी रहेगी। जैसे धूर्य का एक उदाहरण देते हैं, जैसे कृष्ण का ये सत्यभामा जी की एक धात्री है, धात्री किसको कहते हैं, दूध पिलाने वाली, उसकी देखभाल करने वाली, उसको कहते हैं धात्री। बचपन में जो सत्यभामा जी को दूध पिलाया करती थी और माँ के स्थल पर आकर के उनकी सब प्रकार से देखभाल करती है, उसको कहते हैं धात्री। उसका एक लड़का है ना, वो सत्यभामा जी को अपना भाई मानता, बहन मानता है, मानेगा कि नहीं, क्योंकि उसकी मैया ने एक तरह मैया समझती कि हम मेरी बेटी है, तो वो बेटी हुई या बेटा हुआ है। अब कृष्ण उसको अपना सालक समझते हैं, साला किसको, वो धाकड़ी के लड़के, और उससे बड़ा मजाक करते हैं, है सेवक धात्री भी सेविका है, और सेवक उस धात्री का लड़का वो सेवक है, किंतु ये धूल के सेवक है। ये सत्यभामा जी का भाई बन जाता है, और कृष्ण से बड़ा तरह तरह से मजाक इत्यादि भी करता है, उनकी सेवा भी करता है, ये धूल के है। अब ब्रज का धुर्ज कैसा होगा, यदि यहाँ का धुर्ज ऐसा है तो वहां के धुर्ज कैसे, रक्त तक एक है, वो धुर्ज है वृंदावन, वो क्या करता है। अब इनकी जो प्रेयसियां हैं उनका भी तो प्रिय होगा ना, और कृष्ण का भी प्रिय होगा, और भक्तों के प्रति भी है, वो इनसे भी अधिक बढ़ करके कृष्ण को कुछ यदि संदेश भी कभी कभी कोई विशेष भेजना पड़ता है और उनके सखा नहीं है तो रक्तक को कह देते हैं, वो रक्तक जाकर के ये संदेश वहां तक पहुंचा, ऐसे ये पूज्य हैं, उनमें सख भाव निश्चित है। दूसरे होते हैं धीर, धीर कैसे, धीर हैं जो प्रियसी के पास में रहते हैं, प्रिया जी के पास में रहते हैं, और उनके बल पर ये वीर का ये है। ये प्रियसी के या प्रिया जी के आश्रय में रहते हैं, उनकी सेवा में लगा रहते हैं, उनका घर धोना और ये सब करना सब, फिर भी कृष्ण के बड़े कृपा पात्र होते हैं कि ये हमारी प्रिया जी के सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि के ये प्रिय सेवक है, इसलिए कृष्ण की इन पर बहुत विशेष नजर होती है, बड़े कृपा पात्र होते हैं। और वीर वाले ऐसे होते हैं ना जो कृष्ण के अतिरिक्त किसी को भी नहीं गिनते, वो कहते हैं कि बलदेव जी ईश्वर हैं तो क्या हो गया, उनके बड़े भैया हैं तो क्या हो गया, मैं उनको गिनता हूं ना क्या, और सत्यभामा उनकी बड़ी प्रियसी है, मैं किंतु कृष्ण के बल पर उनको भी नहीं मानता हूं।
अपराध नहीं हो जाएगा,
अरे सुन तो लो पहले, वहां पर अपराध का कोई, वहां पर पहुंचेगा अपराध कहां, वो है कहां से ये बात कर रहे हैं। और ये भक्त तत्व को मैं कुछ नहीं गिनता, वो कब का स्खलन कर रहा है, जबकि बलदेव जी नहीं है, सत्यभामा नहीं है, और दूसरे नहीं, वो स्खलन कर रहा है, भीतर में बड़ी प्रीति है, नहीं तो बलदेव जी का अपराध हो जाएगा, या सत्यभामा जी का यदि उस पर नजर बदल गई तेवर तो उसको घर से बाहर कर देंगे, अपराध हो जाएगा, किंतु वहां पर अपराध नहीं जाता, वो तो एक तरह से स्खलन कर रहा है, कृष्ण के प्रति अत्यंत अनन्य प्रेम है, इसलिए वो किसी को कुछ गनते नहीं, इसलिए उनको कहते हैं। ये सब विशेष करके इनके लक्षणों के द्वारा ये ब्रज में जो जितने भी हैं बैकुंठ से अधिक रामचंद्र जी के निकट वाले, और रामचंद्र जी के निकट हनुमान वालों से भी द्वारका वाले, मथुरा वाले से, और उनसे भी अधिक ब्रज वाले, इनका वैश्य ब्रज वाले सब में सख भाव मिश्रित और वही भाव अधिक होता है, इसलिए जहां भी दासों की उपमा दी जाती है जिसको साधारण लोग समझ सकते हैं हनुमान पति भी दिया जाता है, वृंदावन के दासों का लोग नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसकी उपमा नहीं दिया जाता, इसलिए वो बतलाया गया है ना सखे नहीं, एक एक भाव के द्वारा भगवान को उन्होंने प्राप्त किया था। श्रवण के द्वारा प्रहलाद महाराज, कीर्तन के द्वारा सुखदेव गोस्वामी जी, स्मरण के द्वारा प्रहलाद महाराज लक्ष्मी पुत्र पूजन अभिवंदन कपिपत पति
दास सब
कपिपत मने
हनुमान
इसलिए कहा जा रहा है। इसलिए ब्रज का सब कुछ मधुर भाव से युक्त सख भाव से युक्त ये सब दास बड़ी इनकी महिमा है। इन्हीं के लिए ये बतलाया जन्नाम श्रुति मात्रेन पुमान भवति निर्मल तस्य तत्तीर्थ पद इम दासा नाम अवशिष्यते। अब इसको अब इसमें अब आए या अभी तक तो उसके ऊपर में भूमिका थी करें दास ये जो दास है भगवान का कमत समझो अग्रह मुक्ति तबे सर्वबंधनाश तबे से होते पारे कृष्ण का दास होना इतना सहज नहीं है आगे मुक्ति हो जाएगी सब बंधनों का नाश हो जाएगा और इसके बाद में तब कृष्ण का बिरले ही दास होगा कोटि कोटि नारायण भक्तों में से कोई एक कृष्ण तो इनके जिनके दास जन्नाम स्तुति मात्र जिनका नाम श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य मात्र जीव मात्र पवित्र हो जाता है कैसे ना कोई भी भगवान का नाम कृष्ण गोविंद राम इत्यादि जो नाम है कोई भी नाम उनका श्रवण पूर्व करे नारायण नाम है हरि नाम है उच्चारण करने से हरि हरि इत्यादि का मनुष्य पवित्र हो जाता है ने? तो फिर ऐसे जो तीर्थ पद है तीर्थ माने पवित्र करने वाले जो प्रभु हैं उनके दासों की बात तो क्या कही गई उनका बाकी क्या रह गया यदि भगवान का दास कोई हो गया जिनके नाम लेने से ही जगत निर्मल हो जाता है फिर ऐसे प्रभु के जो दास हैं फिर उनकी महिमा का वर्णन हम क्या करें उनको कुछ पाना बाकी रह गया कुछ भी पाना था आज यही चाह तो।
Thank you. नमो महापतन्नाय कृष्णप्रिय भक्तदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यमाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय परभक्ताय यं प्रव्रजन्तमपेशमतेजकृत्यम् द्वैताय नो गिरः कातुर्याव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभेदो तं सर्वभूतैजनम् मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न किमापि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वमहिमाचरणम्
भगवान की दास्य भक्ति तक ले आए राय रामानंद और महाप्रभु जी का संवाद चल रहा है। महाप्रभु जी ने दास्य प्रेम सुनकर बताया जी आगे कुछ और है तो बताई तो महाप्रभु जी राय रामानंद जी उनको बतला रहे हैं कहे गुरु है आगे कहा राय कहे सख्त प्रेम सब साधन साधारण लोग अब तक हम लोग आलोचना कर रहे थे दास्य प्रेम का। राय रामानंद जी ने जो उदाहरण दिए वो साधकों का उदाहरण दिया दास्य प्रेम का, किंतु अब जो उदाहरण देंगे सख से अब वो सिद्ध भक्त का देंगे, इसलिए उन्होंने ये बतलाया कि दास्य प्रेम भगवान के प्रति है ये तो ठीक है, किंतु इसमें गौरव संभ्रम और ऐश्वर्य ज्ञान युक्त ये तीन प्रकार का दोष में दास्य होता है, इसलिए प्रेम और सेवा की वासना संकुचित रह जाती है, इच्छा होने पर भी वो प्रेम नहीं कर सकता। वैसे इसका हमने उदाहरण देकर के सब अच्छी तरह से समझा ये सेवा वासना कैसे विकसित होगी, जब यह भगवान कृष्ण भगवान है यह भाव दूर हो जाएगा, उनके प्रति गौरव भाव हमारे पूज्य हैं ये भी भाव हो गया, ये और मैं दोनों सम हूं, हमसे कृष्ण बड़े नहीं है, ये कौन लाख बड़े गोप के लड़के हैं,
कौन बड़े लोग दुनिया में सम
कृष्ण नंद बाबा के बेटे हैं और हम भी अपने पिताजी के बेटे हैं, वो भी ग्वाल बाल हैं हम भी ग्वाल बाल हैं। जब अंत कृष्ण को छोटा नहीं समझता है तो कृष्ण को बड़ा भी न जब समझेगा तब यह गौरव भाव अपने आप दूर हो जाएगा, ऐश्वर्य बुद्धि भी दूर हो जाएगी, अब कृष्ण को अपना मान करके और बराबर मान करके उसके प्रति ममता का भाव कुछ अधिक हो जाए तब प्रेम में रस होगा, ऐसे नहीं। इसलिए हनुमान जी की अपेक्षा अर्जुन इत्यादि सखा लोग बहुत श्रेष्ठ है, ये सखा रामचंद्र जी के भी है, ये सखा द्वारकाधीश के भी है, ये सखा ब्रज के, ये तीन प्रकार के सखा लोग होते हैं। इनमें सख भाव ही दो प्रकार का, सेवा की वासना जो होती है वो स्वातंत्रमयी और अनुगतमयी दो प्रकार की होती है। दास से जबकि वो बड़ी वासना सेवा की, तो वो दो प्रकार की सेवा और सेवा वासना होती है। पहले वासना आएगी तब सेवा होगी। पहली स्वातंत्रमयी और दूसरी होती है अनुगत्यमयी। यह दो प्रकार की होती है। स्वातंत्रमयी होगा जो कृष्ण के नित्य परिकर हैं, जो कभी बद्ध नहीं हुए, ऐसे लोग। आज जो लोग बद्ध होकर के मुक्त हुए हैं, साधन सिद्ध हैं, उनका भजन अनुगत्यमयी होगा। कोई भी व्यक्ति जैसे सख भाव है, ब्रज का जितना सख भाव है ये अधिकांश है स्वातंत्र, कम लोग अनुगत्यमयी वाले। द्वारका वाले जो आरामचंद्र जी वाले हैं वो कुछ अनुगत्यमयी वाले और उनमें ऐश्वर्य भाव कुछ निश्चित रहा है। अब उदाहरण के द्वारा इसको समझने की चेष्टा करें। जैसे रामचंद्र जी का कौन सखा है? आग जलाकर सुग्रीव जी से मिताली हुई, सीता जी का हरण हो चुका है और राम और लक्ष्मण बनवन में डोल रहे हैं, सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं। रामचंद्र जी एक तरह से प्रेम में पागल हो गए, विरह में विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। सबरी से पहले और लोग ऋषियों से भेंट हुई, फिर सबरी से भेंट हुई। सबरी ने कुछ अपने गुरु जी का नाम लेकर के और उनसे मिलने का अनुरोध किया, फिर अगस्त जी से मिलने के लिए कहा। ये सब होते हुए वो तो पहले थे। अब रामचंद्र जी ऋषिकेश में पहुंचे, वहां ऋषिमुख पर्वत पर पंपा सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां पर एक उनको ब्राह्मण मिला, बड़ा विद्वान ब्राह्मण मिला। थोड़े में ही अधिक बातों को कहने वाला, बहुत मृदु और शुद्ध संस्कृत, भाषा भी बड़ी शुद्ध, अलंकार युक्त, प्रसाद और ओज युक्त भाषा। रामचंद्र जी कुछ जैसे ये साधारण ब्राह्मण इतनी सुंदर भाषा बोल रहा है और इसका बड़ा गुण तात्पर्य है। उन्होंने कहा कि प्रभु आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं तो एक साधारण हूं, महाराज दशरथ का मैं पुत्र हूं, प्रभु आप यहां वन में कैसे आए? मैं यहां वन में आया था अपनी पत्नी के साथ में और भाई के साथ में, किसी ने हर लिया हमारी पत्नी को, इसलिए मैं दुखी होकर के उसको खोज रहा हूं। हनुमान जी को इतनी ही जरूरत थी, यह हनुमान जी थे ब्राह्मण बने हुए, उन्होंने इतना सुनते ही अपना रूप बंदर वाला असली जरूर था वो दिखा। वहां तक तो उनका विश्वास प्राप्त और ये देखना था ये सचमुच में ये है कौन। सुग्रीव जी ने इनको भेजा था देखने के लिए, कहीं हमारा कोई शत्रु बैरी और शत्रु न हो जो पीछे से हमें मार डालेगा, इसलिए आ रहा है। बाली इसको भेज नहीं रहा। जब इनको पक्का हो गया ये बाली का भेजा हुआ ये व्यक्ति नहीं है, तो बहुत प्रसन्न होकर के अपना रामचंद्र जी देखा, जैसे हमारे जन्म जन्मांतर का सेवक, और उन्होंने देखा कि हमारे जन्म जन्म के उन्होंने प्रभु यदि आपको कष्ट न हो तो हमारे साथ आप इस पर्वत के ऊपर में चले। तो महाराज सुग्रीव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आपको इस विषय में सहायता करेंगे। आकाश में, पाताल में, जहां कहीं सीता जी होंगी, वन में, जंगल में, पानी के अंदर में, आकाश में, जहां कहीं होंगी पता। लाख करोड़ों उनके बंदर सब हैं, अद्भुत अद्भुत सब वीर हैं, अद्भुत अद्भुत धारण करने वाले हैं, वो जरूर पता लगे। आप चलिए, चला के चतुराई से आइधर सुग्रीव जी जब देखा जी बड़ा पराक्रमी व्यक्ति है और हनुमान उसके साथ है तो भी वो भगे, उस पर्वत को लांग करके दूसरे पर्वत पर जाकर के अधर्मों से वो देखने लगे, प्राण सर्पक सर्प करने लग गया। हनुमान ने इशारा किया कि डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ाई। तो उनके साथ में जामवंत थे, नल थे, नील थे, ये सब लोगों को लेकर के हनुमान जी ने इनका परिचय दिया। ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बड़े बलवान है। इन्होंने खरदूषण को एक ही बाणों से मार करके खत्म कर दिया है, ये वही है। इसलिए आप लोग डरिए मत, ये कुछ दुख में है, दोनों में मित्रता हो जाए तो आपका इनका काम और आप इनका काम कर दें। बड़े खुश हुए सुग्रीव, बस साथ ही साथ हनुमान जी ने ला करके आग जलाई और दोनों को बैठा करके और मित्रता कर। हम आज से आपको नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं आपसे सब समय मित्रता करूंगा, कभी कपटता नहीं करूंगा, सर्व आग रखती हूँ मैं आपकी सीता जी को, जहां कहीं पताल और इधर में होंगे मैं खोज करके उनको लाऊंगा। जम के घर भी गई होंगी तो वहां से हम लाएंगे। और रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा करी कि तुम्हारी स्त्री को बाली हार में कर दिया है, मैं उसको जैसे जैसे बाली को मार करके, और दोनों विरही थे स्त्री के और दोनों में संभाव नहीं होने से मित्रता नहीं होती, विषम भाव में मित्रता नहीं है। ये मित्रता किस लिए हुई?
दोनों का एक ही व्यथा है,
एक ही व्यथा है, दोनों उनकी स्त्री भाई कर ली गई, बस दोनों में मित्रता हो गई। मित्रता हो गई। आप लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी ने किस प्रकार से छल से बाली को मारा, मित्रता निभाई, और सुग्रीव ने अपने उनके लिए प्राण को अपना मंत्री बनाया, अपना सखा बनाया। और रामचंद्र जी जब इनसे कुछ पूछते हैं तो हाथ जोड़ करके नीचे बैठते हैं और हाथ जोड़ करके प्रभु प्रभु संबोधन, सखा नहीं। रामचंद्र सखा भी कहते हैं तो वो डरते हैं कि ये हमारे प्रभु, कभी भी बराबरी का व्यवहार, सखा का जो व्यवहार होता है, सखा कैसा होना चाहिए? सखा पलंग पर बैठा है तो वो भी आकर के झट पलंग अपना जूठा देगा। कृष्ण के सखा कैसे हैं? अपना जूठा उसे खिला रहे हैं और उसका जूठा खा रहे हैं, कृष्ण भी उनका जूठा खा रहे हैं, अपना जूठा खिला रहे हैं, एक पलंग पर सो रहे हैं, एक जगह है, कभी वो उनका पैर दबाते हैं, कभी वो उनका पैर खतने पर दबा देते हैं, और सारे तारे जितनी भी जो कुछ है सब कुछ परस्पर करते हैं, तरह तरह की खेल कूद इत्यादि का। ये सुग्रीव जी ऐसा नहीं कर सकते। और दूसरे उनके सखा कौन है? विभीषण। किंतु ये सखा भी वैसे ही है, उनके साथ में बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकते। क्यों? भगवान का ऐश्वर्य चित्त ये सब देखा है, इसलिए बराबर नहीं। इसलिए ये सखा न मात्र के हैं, यथार्थ सह सखा नहीं है, जो होना चाहिए बराबरी का भाव होना चाहिए। अब चलिए हम द्वारका में, द्वारका में उनके सखा लोग हैं, एक तो सुदामा जी है ना, एक सुदामा जी, दूसरे कौन? उद्धव जी, और हैं पांचों पांडव, और एक सखी है
द्रौपदी
जी सखी। ये सब सखा के अंतर्गत है। अब हम लोग विचार करें, रामचंद्र जी के सखा का तो बतलाया, कृष्ण के सखा कैसे हैं? सुदामा जी कृष्ण के पास में आए और जब ही डोही के ऊपर से देखा, वो विप्र जिसके पैरों में बैवाय है, फटे हुए पैर, कला पर उठा हो गया है, खाने के बिना पेट भीतर चला गया है पीठ की तरफ में, और कपड़े कैसे सुंदर, बगले के पंख के समान हैं, न कौवे के पंख के समान हो गए हैं।
उनके पंख चिकना ही है, जो चिकना ही
गंदे भी हो गए, इतने चलते चलते थके हमारे पाँव।
कहाँ से आ रहे हैं? पोरबंदर से आ रहे हैं और जा रहे हैं कहाँ? द्वारका। कम से कम तो 50-60 मील दूर। बेचारे सवेरे से रात भर चलते 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 सवेरे चलते चलते वहां पर। ब्राह्मणों ने कोई मना नहीं किया, घट रुक्मिणी के घर में पहुंच गए। उसमें रुक्मिणी के पलंग पर प्रभु बैठे थे और रानियां सब पंखे झला रही थी, चमक बुला रही थी। आज स्वयं रुक्मिणी ही बुला रही है चमक। और इतने में वो दिख पड़े दूर से, बस दौड़ करके सब रानियों को छोड़ दिया और छोड़ करके दौड़े गए और उनको गले से लगा दिया। गले से लगा करके आंख से आंसू बरसने लगे और वहां से लेकर के आए अंदर महल में और अपने पलंग पर बैठा दिया। विभीषण को बैठाया, कभी लक्ष्मण जी को बैठा दिया, रामचंद्र जी विभीषण को कोई भी नहीं बैठा। आज ये अपने द्वारकाधीश वाले क्या कर रहे हैं? उनको अपने पलंग पर बैठा और अपने कहां बैठे? नीचे बैठे और पैर धोने लगे। रानियां सब पैर धोने लगी, बोलाने लगी, कोई पंखे चलाने लगी, कोई कुछ करने लग गई। इन्होंने समझा शायद कृष्ण ने हमको पहचाना नहीं, इसलिए इतना आदर कर रहे हैं। कृष्ण उनके भाव को समझ गए। सखा एक बात कहूं, गुरुप्रिय में रहते हुए हम लोग एक दिन लकड़ी लेकर के भीज रहे थे, रात में अंधेरे में वर्षा हो रही, याद है उस दिन की बात? अब उनको विश्वास, अरे ये तो ये जानबूझ करके कर रहे हैं, धोखे में नहीं कर रहे हैं। कैसा उनको सम्मान दिया, जाने के समय तक कुछ नहीं दिया, एक कौड़ी पीली धोती भी नहीं दी। उन्होंने समझा था, अरे कुछ नहीं देने, प्रभु बड़े दयालु हैं, हमारी भक्ति उनके प्रति नष्ट हो जाएगी, अंततः एक पीली धोती तो देंगे। एक पीली धोती भी नहीं, पीली धोती की गांठ में चावल और 2 रुपये भी बांध दे दी। ऐसा करते हैं इधर, उन लोगों के तरफ तो ऐसा ही देखा था। कोई आ गया तो उसको गुरु को, जमाई को और लोगों को चावल दे करके, दुर्गा घास दे करके उसमें गांठ में कुछ पैसे बांध दिया और उनको दे दिया। तो ये कुछ भी नहीं किया। इधर जब घर में गए तो देखा 16108 गाय बंधी है, काम धेनु गाय, और 16100
घोड़े
घोड़े और हाथियां भी ऐसे हैं, और 16108 मकान बने हैं, राजभवन एक एक से
दासी,
और उस स्त्री की दासी 16100। घरों में ऐसे ही सब बर्तन, माने एक एक रानी ने एक एक चीज दिया, बताओ ना कितना हो जाएगा 16108। एक एक भी दिया, एक सोने का घड़ा भी देगी 16108, घोड़े गाड़ी सब एकदम वैभव एकदम खत्म। ऐसे दयालु प्रभु, और समझने नहीं दिया। ये देखो यहाँ के सब, थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। अब चलो हम लोग चलते हैं हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में चलते, वहां के सखा सखी लोग कैसे हैं, अर्जुन कैसे सखा है। नारद जी को एक दिन इच्छा हुई कि मैं कृष्ण के किसी अच्छे भक्त के यहां जाओ, जो सबसे अधिक उनका सेवक हो, भक्त हो, सखा हो। शंकर जी ने कहा कि यदि भक्तों को देखने की चाहे तो चले जाओ अर्जुन के यहां, और वहीं पर तुमको प्रभु भी मिल जाएंगे और भक्त भी अर्जुन मिल जाएंगे, जाकर के देख। वो बिना लेकर के वहां पर पहुंचे, वहां जाकर के देखा, जरा पहले से छिप करके देख रहे हैं, अर्जुन और कृष्ण एक ही पलंग पर बैठे हैं, सो रहे हैं, और अर्जुन के वो कृष्ण कौन है, साले हैं ना, साले लगते हैं, सुभद्रा जी के भाई कृष्ण हैं, इसलिए उनके गले में हाथ दे करके जैसे साले से दिल्लगी करते हैं वैसे दिल्लगी कर रहे हैं। तरह तरह की बातें बड़े प्रेम के साथ में एक ही पलंग के ऊपर में, और करते 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 थोड़ी देर के बाद अर्जुन भी सो गए, कृष्ण भी इसी पलंग पर सो गए। अर्जुन का सिर एक तरफ में और भगवान का सिर एक तरफ में पलंग के, और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती से होते हुए जा रहा है और कृष्ण अपने हाथों से दबाए हैं पकड़े हुए हैं, और उधर में सत्यभामा रुक्मिणी जी चमर इत्यादि बुला रहे हैं सेवा कर, और इधर में कृष्ण के चरण हैं वो अर्जुन के तरफ से होकर के गए हैं, अर्जुन अपने हाथों में रखे हैं, और इधर में सुभद्रा और द्रौपदी जी चमर डुला करके उन पैरों का संवाहन कर रहे हैं, और कृष्ण के रोम रोम से कृष्ण 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 अर्जुन के देकर के एकदम दम ये सखा है यहाँ। और सखी कैसी है द्रौपदी जी, हाथी पर जबकि कष्ट हुआ आया ना, विपत्ति आई, ग्रह ने पकड़ लिया, तो भगवान ने क्या किया, किसको भेजा, किसको भेजा,
नारायण जी को, अजीत भगवान,
अजीत भगवान को, नारायण को अपने अंश कला को भेज दिया, और अम्बरीश महाराज के ऊपर में भीड़ पड़ी तो किसको भेजा,
चक्र को भेज,
चक्र को भेज, अपने खुद नहीं आते, चक्र को भेज देंगे वो चक्र काम कर लेगा। अजीत चक्र भगवान का था, और दुर्योधन और दुशासन मिलकर के जब चीर हरण कर रहे हैं
तो
उस समय चक्र कहाँ चला गया था, कहाँ चला गया, चक्र तो आना चाहिए था, चक्र आया नहीं, क्यों नहीं आया, इसका कुछ कारण है, क्या कारण हो सकता है। प्रभु ने देखा यदि गजग्रह की भांति और अम्बरीश की भांति साधारण भक्तों के लिए हमारा चक्र सब समय रक्षा करता है, और यदि मैं चक्र ही वहां पर भेजू तो एक सेकंड में उनका काम तमाम करके उसकी रक्षा तो हो जाएगी, किंतु द्रौपदी को शांति नहीं होगी, बिना हमको देखे उसकी तृप्ति नहीं होगी, कहेंगे ओ हमारे लिए भी इसको भेज दिया। राधा जी के पास में यदि विश्वभानु महाराज अपने नौकर को भेज दीजिए, जाओ राधा जी को हमारी लड़की को बुला लाओ, तो राधा जी आएंगी दूध कार करके भगा दे, इसलिए कौन जाता है बुलाने के लिए,
सुदामा जी,
सुदामा जी जाते हैं, और तब वो रोने लगती हैं, भैया तुम लोग हमें एकदम भूल गए, और तब वो सुदामा जी भी सुदामा भी रोने लगते हैं। इसलिए जहां जहां खास व्यक्ति हैं वहां चक्र नहीं भेजेंगे, नौकर चाकर नहीं भेजेंगे, अपनी अंश और कला को भी नहीं भेजेंगे, वहां उनको अपने जाना पड़ेगा, इसलिए कृष्ण वहां पर अपने जाने के, किंतु कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, चक्र की तो बात छोड़ो, वहां पर भीम बैठे थे ना 10,000 हाथी का बल लेकर के बैठे, जिस समय दुशासन को पकड़ा और पकड़ करके उसे नीचे गिरा दिया और भुजा उखाड़ रहे थे, उस समय बोले विश्व ब्रह्मांड के अंदर में कोई भी वीर हो वो आकर के इसकी रक्षा करे, आज मैं इसकी भुजा उखाड़ करके उसी के रक्त से
द्रौपदी
का सिर
जुड़ा बंधा
ये पंथा हुआ। उसने भी द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की, ये दुष्ट का खून से मैं अपने जुड़े को बंधाऊंगा सिर के, अन्यथा खुला रहेगा, तो आज वो पहले तो उसे मार करके खून निकाला और लेकर के चारों तरफ में लगा दिया, पिया नहीं, भयंकर देखा बना। उस समय अर्जुन उठाए आज जिसको मार दूंगा, भगवान कृष्ण है जहां मैं हूं और ये कारा जो कोई गिरा करके रक्षा कर, तो भगवान ने कहा अर्जुन का हाथ पकड़ लिया, चुप रहो आज, चुपचाप बैठो आज, सह लो आज, हमारे निसिंह रूप का जितना बल है सब बल इसको दे दिया, आज इसे कोई पार नहीं पाएगा, अच्छा ऐसे भीम जो बैठे थे वहां, वो चाहते तो एक गदा में वो दुर्योधन और दुशासन को मार नहीं सकते थे, सबको मार करके गिरा देते, किंतु वहां पर क्यों नहीं गिराया? युधिष्ठिर ये समझ गया, समझ गए थे वो प्रभु खुद अपने हाथ से आ रही, अरे पिएंगे पानी तो स्वाति नक्षत्र का, गड्ढों का पानी नहीं पिए। ऐसे ही आज कृष्ण स्वयं आए, वही उनकी रक्षा कर, वो भी दिखला रहे हैं अपने भक्तों के लिए, वो स्वयं आते हैं, ये साधारण ये सखी है। अच्छा वहां पर अच्छा भीम का एक और सुन लो, पांडवों का वनवास था 12 महीने व्यतीत हो, 1 वर्ष अज्ञात था। अज्ञात में यदि कौरवों को पता लग जाए, जो अर्जुन पांचों भाई ये यही हैं और यही हैं, माने यही हैं, तो उनका 12 वर्ष के लिए फिर वनवास हो जाएगा। इसलिए अज्ञात महीने में 1 दिन बाकी रहने तक प्राण पण से लगे हुए थे, ये पांडवों का कहीं पता लग जाए और हम लोग उनको प्रकाश, जैसे कि वो 12 वर्ष के वन में चले जाए, इसलिए उनको कुछ शक हुआ। अब थोड़े से दिन, अभी 8-10 दिन रह गए, द्रौपदी वहां पर बनी थी शैलेंद्री रानी की दासी, वहां के राजा की, विराट राजा की दासी बनी, रानी की दासी। उसने कल एक शर्त रखा था, हमको महीना मत देना बल्कि, किंतु किसी का मैं जूठा नहीं खाऊंगी और जूठा बर्तन नहीं मारू, और इसके अतिरिक्त मैं सत्ता में, और उनके घर में काम करते 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 1 वर्ष हो गया था। अब 3-4 दिन बाकी था, कीचक था उसका भाई रानी का, उसकी खराब दृष्टि इस पर लग गई, इतनी सुंदरी है और ये दासी इसकी, हमारी बहन की, वन से जाकर के कहा, बहन ये दासी को हमको दे दो, मैं इसे विवाह करके रानी बनाऊंगा, जो खबरदार इसे मत बातचीत करना, तो बहन तब तो मैं अपना प्राण खत्म कर दूंगा, तुम मेरी सहायता करो, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, तुम किसी प्रकार से हमारे पास में इसको भेज दो। उन्होंने कहा जैसे अच्छी बात है, तो उन्होंने अपनी दासी को माने शैलेंद्री को बुला करके कहा, देखो हमारा भाई जरा प्यासा है, वो घर में बैठा, उसको थोड़ा सा पानी दे आना, तो जहां डर वहीं पर बाहर निकल गया। मतलब क्या, जिसे वो बातचीत नहीं करना चाहती थी, आज ये उस पर जोर दे रही कि जाना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं जाएगी तो हम अपने घर में नहीं रखेंगे, अब तो बड़ी विपत्ति में पड़ी, कहीं अब 3-4 दिन का, इतना तो 12 वर्ष
बिता दिया, 13 वर्ष बीतने वाला है,
13 में अब थोड़े दिन किसी प्रकार से धैर्य रखना, और पांचों पांडव से मिलमिल करके बीच बीच में गुप्त रूप से बतला भी दे रहे हैं, अब किसी प्रकार से धैर्य रखना, किंतु अब धैर्य रखना पड़ा। अब रानी ने उनको भेज दिया, वो तो जानती नहीं थी कि द्रौपदी है, भेज दिया, वो जब गया तो उसको पकड़ने दौड़ा और कहा तुम हमारी रानी बन जाओ, नहीं तो तुम्हें हम कत्ल कर देंगे, जबरदस्ती पकड़ने, अच्छा ठीक है, आज रात में तुम रसोई घर के पास उस घर में हमसे मिलना, कह करके चलिए जाकर के भीम से कहा, तुम विपत्ति में हमारी रक्षा करते हो, अब तुम ये रक्षा करना तुम्हारा था, अर्जुन हिजड़े बने हुए हैं ब्रह्मनल्ला, इसलिए वो अभी कुछ नहीं कर सकते, प्रीति तो उन्हीं पर है अभी, और वो चाहते तो सब कुछ कर देते, किंतु अभी हिजड़े बने हुए हैं, इसलिए कुछ बने करेंगे नहीं। भीम के पास में जाकर के रात में एकांत में रोने लगते, उन्होंने कहा कि रो मत, रोने से हमारा हृदय बदल जाता है, तुम बतलाओ जी क्या बात है। उन्होंने कहा ये कीचक 100 हाथियों का बल रखता है, कितने 10,000 हाथियों का बल रखता है,
और आज से हमने उसे प्रतिज्ञा की नहीं तो हमें मार डालता। अरे इस थोड़ी सी बात के लिए चिंता मत करो, जाओ आना आराम से रहो, ये कह करके उनको संतरा दे करके विदा कर और अपने स्त्री का वेश बनाकर ऊपर से कपड़ा ओढ़ लिया, कपड़ा ओढ़ करके और उसी पलंग पर जाकर के जहां बात थी उस घाट पर जाकर के सो गए और कपड़ा ऊपर नीचे से टांग लिया। इतने में प्रेमी कीचक वहां पर उपस्थित रस भरी बातें करता हुआ कामना से युक्त होकर के वहां पर पहुंचा। अरे सो रही है, उठो उठो मैं आ गया। तो उन्होंने अच्छा, उन्होंने स्त्री की बोली का नकल करके, किंतु नकल क्या करेंगे, नकल तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा जैसे आ गए पथारिये बैठिए, ये तो पुरुष मान जैसा लगता है। इतने में जब इधर उधर होना तब भीम ने पकड़ लिया, अब तो हस्ता धस्ती लस्ता लस्ती होने लग गई। अंत में उसे पकड़ करके उसे जैसे बकरी का वध करते हैं एकदम भेड़ की तरफ उसे गला दबा करके उसे मार, हम मार करके उठा करके और उनके राजभवन में फेंक दिया जहां उसकी बहन थी। अब चारों तरफ शैलेंद्री नहीं विराट राजा की स्त्री उनके घर में एकदम माल में फेंक दिया। बहुत जोर से शब्द हुआ, राजा इत्यादि आके अरे ये तो मारा गया, कैसे मारा गया। अब ये समझ गई जिसकी रक्षा करने वाले पांच गंधर्व है उन लोगों ने से पहले बता दिया था तो उसी में से किसी ने मार दिया। सवेरा उनके भाइयों को पता लगा ये इस स्त्री के कारण इस दासी के कारण ये मारा गया। अच्छा बस उसको पकड़ लिया केस और खेने लगे, मरघट पर ले जाने लगे और उसको भी अर्थी सजा करके मरघट पर लेने गए, उसके साथ ही में इसका दाह कर दें। ऐसे तो हुआ मिला नहीं तो ठीक है, जब इसको हम जलाएंगे इसको भी उसके साथ में जला करके खत्म पकड़ करके ले जाए। अब उनके साथ में बड़े बड़े वीर लोग भी जा रहे हैं, हनुमान उन्होंने भीम ने देखा फिर उसको पकड़ लिया तो अच्छी बात, बस अपने कपड़े खोल दिए लंगोट के पहन लिया, बड़ा भयंकर रूप बनाया, केसों को बिखेर दिया एकदम और लगा लिया धूल फूल ये सब चेहरे को
बिगाड़ सके
और असु जैसा और एक पेड़ उखाड़ लिया और बड़े बेग से दौड़े। वही जब सा आ तो नहीं गया जी हमारे भाइयों तुम्हारा, सब लोगों ने मिलकर के सामना किया, सबको मार और द्रौपदी को गोदी में उठा करके राजभवन में पहुंचा करके फिर अपने आप अपना साधारण पेश। ऐसे भी जहां पर बैठे हैं द्रौपदी का वहां पर चीरहरण हो रहा है, वो चाहते तो उसको उसी समय सब भाइयों को मार करके नष्ट कर देते कि नहीं कर देते, किंतु भीम को बता किस लिए, मैं खुद उसकी रक्षा करूंगा इन लोगों के द्वारा। अच्छा ये अर्जुन कैसे वीर थे, साधारण थे, शंकर को संतुष्ट कर दिया और उनको बात और भीम भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि को जो उनके समय में विश्व में कोई बराबर नहीं था उनको भी मार करते थे, वो क्या कंडी उठा लेते तो वो बच जाते, किंतु नहीं भगवान दिखलाना चाहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा इसलिए खुद आकर के और उनकी। ऐसी ये सखी है जब दोनों मिलते हैं ना तो कैसे मिलते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हुए द्रौपदी भी मुस्कुराती है, वो सखा और कृष्ण सखी करते हैं। अर्जुन भीम से तनिक भी स्नेह में आते बहुत अधिक द्रौपदी के स्नेह के बसी होती है ऐसा सखी करते, किंतु इन लोगों में से किसी को ब्रज में नहीं भेजा। अब चलिए द्वारकापुरी में उनके सखा उद्धव जी के पास, वो कैसे सखा है, उनके सखा हैं, मित्र हैं, मंत्री हैं, परिषद हैं, सभी उनके हैं। इनको ये देखा जाता है अपनी जो क्रिया जो किसी को उनके पास में नहीं भेजेंगे उद्धव जी को ब्रज में भी, इसलिए फिर उनको संतना जाओ मेरी बातों को संदेशों को वहां पर भेज।
उद्धव गए और आप लोग सब गए। ये उद्धव पर उद्धव जी ने खुद कहा है, ये भगवान की हमारे ऊपर में प्रचुर कृपा हुई है जो गोपियों के पास में भेजा, इसलिए गोपियों की कृपा को हम कुछ समझ सके, गोपियों के प्रेम को हमने कुछ समझा। इसलिए पांडवों से भी और द्रौपदी से भी उच्च कोटि का इनका प्रेम है उद्धव जी का। इस उद्धव से भी ब्रज के जो उनके सखा हैं, कौन सखा लोग हैं, पहले तो ये समझिए सखा है नित सुहित सखा ब्रजवासी सुहित सखा, इसके बाद में सखा प्रिय सखा प्रिय नर सखा। ब्रज में ये चार प्रकार के उद्धव इत्यादि से कोटि गुण श्रेष्ठ। कृष्ण अपने मन की अंतरंग बातें उनसे नहीं करेंगे उद्धव से, किंतु इनसे अंतरंग बातें सब कुछ कह देंगे। तो सुनिध वो हैं जो कृष्ण से उम्र में बड़े हैं और वो लोग इन पर कुछ वात्सल्य भावयुक्त सख्त रखते हैं, जैसे बलदेव प्रभु जी और हैं सुभद्र और ऐसे बहुत से मंडली भद्र इत्यादि। ये लोग सब समय कृष्ण की रक्षा करते हैं और उनसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए ये लोग कहलाते हैं सुहृद। सुहृद माने क्या होता है, कुछ बड़ा हो और कुछ वात्सल्य भाव युक्त होकर के वो सेवा करते, किंतु सख्त प्रधान है। सखा लोग कौन है, विशाल वृषभ इत्यादि सखा जो कृष्ण से उम्र में छोटे हैं। कृष्ण है 14.5-14 वर्ष और सखा लोग कितने हैं, 12-12.5 वर्ष के। ये कृष्ण की सेवा करते हैं, कैसी सेवा, उन लोगों में गौरव भाव था, इनमें गौरव नहीं, संकोच नहीं, भगवत ऐश्वर्य बुद्धि भी नहीं, विश्रम्भ भाव, कृष्ण से कुछ छोटे किंतु सेवा कराए, ये सब सखा है। प्रिय सखा कौन है, जो बराबरी वाले उम्र वाले, जैसे सीदाम। सीदाम कौन, राधिका जी के भाई सीदाम और सुदाम वसुदाम, ये वसुदाम इत्यादि सब सीदाम सुदाम श्रीदाम वसुदाम किंकिणी इत्यादि, ये सब ये सब कृष्ण के बराबर के उम्र वाले। और प्रिय नर्म सखा है कृष्ण के बराबर हैं, किंतु ये कुछ कृष्ण के प्रति और गोपियों के प्रति कुछ अधिक भाव वाले हैं। प्रिय नर्म नर्म माने क्या, कुछ श्रृंगार संबंधी ऐसे भाव वाले, जिसमें अर्जुन सुबल उज्जवल मधुमंगल इत्यादि, जिसमें कि सुबल और उज्जवल सबसे श्रेष्ठ है। सुबल कैसे हैं, ऐसे हैं ये उद्धव जी तो वैसे सखा उनका बतलाया गोपियों के निकट गए, और सुबल जी क्या करते हैं, सुबल जी की एक समय की बात, कृष्ण जी भांडी वन में कुछ लीला विलास कर रहे, राधा ललिता विशाखा सभी वहां पर, इतने में पद्मा जी आई और देख ली, छिप करके देखा और झट वहां से चली गई
जावट
जावट में। जावट में जाकर के मिली
जटिला,
जटिला जी मिली कंडे बना रही थी और मन ही मन में झुझुला रही थी, इतने में ये पहुंच करके कही तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है, तुम्हारी बहू को आज मैं देखा भांडी वन में कृष्ण के साथ में बड़े विहार हो रहे हैं, कितना तुम्हारा सौभाग्य, अभी नंदभवन से गहने आ जाएंगे कपड़े लत्ते आ जाएंगे उसी में तुम खुश रहना, और यह कह करके चलने लगे। तो उसने झट उसका हाथ पकड़ लिया, तुम्हारी बहू वहां है, सचमुच में सोचे देखा मैंने तो कहां गई, वहां है
बस क्रोध इसको हो गया। अरे हाँ हाँ वहां जाकर के देखो और मुख प्रज में मत देख लाना, ताना मारने लगी। तब वहां से वो अच्छे ठीक है वही है तो आता हम वही बस पौर्णिमासी जी के हैं भाई, और उनको साथ लिया। हमारी बहू का करतूत देखो तुम लोग तो बड़ी प्रशंसा करते, और मुखरा जी को ले लिया। मुखरा ना, मुखरा जी को ले लिया। और अच्छे अच्छे जो वहां के गणमान्य द्वैत भक्ति है ना, पंच सभाओं को ले लिया,
महिला व्यक्ति को लिया, महिला समाज
लेकर के जो इनकी बात नहीं मानता था उनको लिया, और लेकर के भांडीर बन में पहुंची। और पहुंचते ही राधा जी का हाथ
पकड़ लिया।
इसके पहले ही किसी ने जाकर के इनके सखा ने जाकर के कह दिया, किसने कोई सखा नहीं, नहीं विशाखा जी, विशाखा जी ने जाकर के बतलाया, अरे अभी कुटिल जटिला जी आ रही है सब सखियों के साथ में, सावधान बरसात ही साथ में, और श्यामला जी, श्यामला जी ने बतला वो सुहित पक्ष वाली इसलिए बतला दिया। बस वो लोग तैयार होकर के राधिका जी को वहां से हटा दिया और सुबल जी को राधा जी बना दिया। एकदम सुबल एकदम राधिका जी जैसे ही बन गए। वो आते ही जटला ने उसका हाथ पकड़ लिया, भाग करके कहां जाएगा, आज तो रंगे हाथ तुमको पकड़ लिया। देखिए पौर्णमासी जी आप मेरी बात नहीं मानती, मुखरा देखो तुम बात नहीं मानती हो, आज पकड़ लिया ना। इतने में मधुमंगल ने उनका कपड़ा खींच दिया सुबल का, और वो लड़का बन गया। अब सब लोग ताली बजान करके हंसने लगे। ये सुबल का देखो, ये सखा है सुबल का। कृष्ण ने क्या किया सुबल को, एकदम आज तुम नहीं रहते तो आज तुम बेइज्जत हो जाते। ऐसे सब सखा हैं, उज्जवल तो ऐसे, उज्जवल भी ऐसे ही है। एक दिन उज्जवल ने अपना रूप बनाया, माननीय राधिका जी के पास में गए। राधिका जी कह रही है ललिता जी से, ये देखो वो ये कोई दूसरी औरत नहीं है, वो भी नहीं, ये उज्जवल बना हुआ है, आज आएगा ऐसी चाकूसी बात रहे हमारा मान नहीं कहां फल जाएगा, अब हमारा मान नहीं रहेगा, तुम हजार चेष्टा करो। किया मैंने ऐसे ये सब कृष्ण के परम सुहृद और ये सब सखा है, इसलिए ब्रज के जो सखा है यही अवसर शिष्य है। इसी के लिए वो कहते हैं इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दर्शन गतान पर दैवतेन मयाश्रितान नरदारकेन साधं विजयोहर।
आज यही तक रहे, कल इसकी
पंचा।